समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तन्वी खुराना के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना, और आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम आपको देश दुनिया के वो समाचार देंगे, वो तमाम जानकारी देंगे जिसका आपसे है सरोकार। तो इससे पहले कि मैं तन्वी से कुछ और बातें करूं, तन्वी सीधा सीधा एक सवाल तुमसे पूछता हूं। बात यह है कि तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, दो ऑप्शन हैं, एक ऐसे लोगों के साथ रहने का जो धीर गंभीर बोझिल हैं, और दूसरा विकल्प है एक जिंदा दिल इंसान से रहने के साथ। किसका हिस्सा चुनोगी?
ऑफ कोर्स अ लाइवली लवली एंड अमेजिंग पर्सन।
ये सिर्फ आज के लिए है या
ऑलवेज?
क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी जिंदा दिल का नाम है और मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तन्वी आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे। और जानते हैं ना कि ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई का जो पहला रविवार होता है ना, उसको वर्ल्ड लाफ्टर डे कहते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत से क्यों ना आज शुरुआत की जाए और फिर हंसते हंसते सारा प्रोग्राम किया जाए।
एब्सोल्युटली।
जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल।
So with this, we can say that laughter is the best medicine. I'm sure you have heard this quote. And a day without laughter is a day wasted, said by Charlie Chaplin. So true these words are, because a laugh can make your day, and without laugh, it can break your day.
और अगर आप हंसता नहीं जानते ना, तो ऐसा कीजिए कि एक बार लखनऊ जरूर हो आइए, क्योंकि लखनऊ रेलवे स्टेशन से जो भी बाहर निकलते हैं ना, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और ये पढ़ते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
यस, सो प्लीज लाफ लिसनर्स एंड स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, देयर इज नथिंग एल्स दैट विल नो कीप यू हेल्दी। सो विद दिस लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम आज सवेरे, एंड नवीन हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू टू दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स, एंड विद दिस लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस, शैल वी।
चलिए, आज सवेरे की इस रेलगाड़ी को हम सीधा सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे से खुल गए हैं पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ। भगवान बुद्ध तथा गरुड़ की उत्सव डोली और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी कल बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी। वहीं भगवान कुबेर की उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए बामणी गांव स्थित मां नंदा देवी पहुंच चुकी है। आकाशवाणी से कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुबह 6 बजे से प्रसारित किया गया, और ये जो आप घंटियां सुन रहे हैं ये बद्रीनाथ धाम की है। उधर रेलवे ने चारधाम यात्रा के लिए भारत गौरव डीलक्स ट्रेन की शुरुआत की है। यह रेलगाड़ी बद्रीनाथ, जोशीमठ, ऋषिकेश, पुरी, कोणार्क, रामेश्वरम और द्वारका के साथ साथ काशी विश्वनाथ, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए शुरू की गई है।
जीवन सफल उसी का समझो जिसने किया ये काम, कर लो चारों धाम मिलेंगे।
ये रेलगाड़ी इस महीने की 27 तारीख को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 17 दिन में चार धाम सहित और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा पूरी करेगी। ट्रेन के टिकट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रेलवे की वेबसाइट पर बुक की जा सकती है।
Indeed. great. This is a wonderful initiative. And with this, let me ask you, Naveen, how many dhams have you done?
दो धाम तो मैं कर ही चुका हूँ, बाकी के दो धाम रह गए हैं, देखते हैं कब हो पाते हैं.
सेम हियर, माइन टू आर डन एंड टू आर लेफ्ट, एंड आई एम प्लानिंग टू डू दोस टू वेरी वेरी सून.
तो नेक्स्ट टाइम जब तन्वी और मैं मिलेंगे ना, तो हम चारों धाम की यात्रा कर चुके होंगे.
डन. ओके, let's go further. The United States has approved the sale of Hawkeye 360 technology to India to boost the country's surveillance capabilities. The move will enhance India's maritime domain awareness in the Indo-Pacific region. In a statement, U.S. Defense Security Cooperation Agency said that the proposed sale will improve India's capabilities to meet current and future threats by bolstering its maritime domain awareness, analytical abilities, and strategic posture. The system, utilizing satellites in low Earth orbit, will improve India's ability to detect illegal activities and monitor its exclusive economic zone. The $131 million deal includes software, training and support, bolstering India's strategic posture. Hawkeye 360 collects and analyzes radio frequency signal location with a constellation of satellites in low Earth orbit. Some vessels, which go dark to roam undetected in disputed areas and evade tracking, can also be detected with this advanced technology. The National Testing Agency, NTA, will conduct the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2025, today across over 5,000 centers in the country and 13 cities abroad. NTA, in a statement, said that all preparations and logistical arrangements for organizing a safe and secure examination have been made. Over 22.7 lakh candidates have registered for the examination, which will take place from 2 p.m. to 5 p.m. The mock drills at all centers were successfully conducted earlier yesterday. In a concerted effort to curb the spread of baseless rumors about the availability of NEET UG examination content, the NTA has taken up the cases reported through its suspicious claims portal with the Indian Cybercrime Coordination Center, I4C. The NTA added that as a result, action has been initiated against over 165 Telegram channels and more than 32 Instagram accounts disseminating false information.
और अब खबरें वेव सम्मेलन की.
वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट. वेव्स Connecting creators, connecting countries. Waves.
मुंबई में आज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का संपन्न हो रहा है. आज अंतिम दिन है. फिल्म निर्माण के आज कुछ सत्र होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा. चार दिन के सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को किया था. यह आयोजन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास था.
So Naveen, let's go to the live to our correspondent Adarsh in Mumbai, who is covering the Waves Summit. Adarsh, would you like to tell us what will be the major highlights during the last day of Waves Summit?
Tanvi, on the last day of the summit, a masterclass will be organized on visual effects and film production. Along with this, workshops are scheduled on generative AI in media and entertainment startups, best practices for social media, advertising for influencers, as well as filmmaking using mobile camera, in which experts and renowned personalities will share their views and experiences. A range of cultural programs will also take place throughout the day. Tanvi, the winners of Create in India Challenge under the Wah Ustad category will perform traditional classical music. Apart from this, Tanvi, top bands of the country will enthrall the audience with a blend of modern music with folk elements from across India. Finally, at the end, during the grand finale, the country's top DJs will produce an immersive experience through an electronic dance music or a EDM challenge.
Thank you for sharing the updates, Adarsh. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Anthony Albanese on his election as the Prime Minister of Australia. In a social media post, Mr. Modi wrote, "The emphatic mandate indicates the enduring faith of the Australian people in Mr. Albanese's leadership." Mr. Modi added that he looks forward to working together to further deepen the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership and advance the shared vision of both the countries for peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific.
वियतनाम में थान टैम पगोडा में कल 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के अवशेषों पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये अवशेष केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और आंध्र प्रदेश के मंत्री कुंडला दुर्गेश के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल द्वारा भारत से लाए गए हैं। भगवान बुद्ध के ये अवशेष इस महीने की 21 तारीख तक संयुक्त राष्ट्र वेसक समारोह का हिस्सा बने रहेंगे। इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र वेसक समारोह का विषय है मानवीय मर्यादा के लिए एकता और समावेशिता, विश्व शांति तथा विकास के प्रति बौद्ध दृष्टि। भगवान बुद्ध के ये अवशेष 1898 में भारत नेपाल सीमा पर कपिलवस्तु में खुदाई में मिले थे। इन अवशेषों को वियतनाम के अन्य प्रमुख आध्यात्मिक नगरों में भी ले जाया जाएगा।
Singapore's long-ruling People's Action Party, PAP, secured another landslide victory in the general elections, extending its 66-year rule. Election Department has announced that Prime Minister Lawrence Wong's PAP won 82 parliamentary seats after vote counting concluded, with 5 additional seats won uncontested, giving them a total of 87 out of 97 seats. The Opposition Workers' Party retained its 10 seats. The PAP PAP's popular vote rose to 65.6%, up from a near-record low of 61% in 2020 polls.
और अब खेल खबरों की ताजा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी निखिल के पास।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ आज से हो रहा है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर तथा बेगूसराय में किया जाएगा। इसके अलावा कुछ खेल नई दिल्ली में भी आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह का आंखों देखा हाल आज शाम 5:55 से प्रसारित होगा। ये प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप, प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल और DTH पर उपलब्ध रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज इस भव्य आयोजन का उद्घाटन करेंगे। 15 मई तक खेले जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित भी करेंगे। इधर IPL क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से हरा दिया। बेंगलुरु ने 20 ओवर में 213 रन बनाए थे, जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 211 रन ही बना सकी। इस हार से पहले ही चेन्नई की टीम प्ले ऑफ की से बाहर हो चुकी है। और आपको बता दें कि IPL में आज दोपहर 3:30 से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि शाम 7:30 धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ में होगा। खेल खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं तन्वी और नवीन के पास।
We have some more news among sports. In football, FC Goa defeated Jamshedpur FC 3-0 in the final to win the Kalinga Super Cup 2025 title in Bhubaneswar yesterday. Borja Gonzalez scored a brace while Dejan Drazic added another to seal the victory for FC Goa. This marks FC Goa's second Super Cup title, their first since 2019. With this victory, FC Goa qualified for the AFC Champions League 2 2025-26, marking their return to the Asian club competition after 4 years. The Super Cup is India's premier domestic cup competition.
और अब एक नजर महानगरों की खबरों पर। तन्वी,
लेट्स बिगिन विद बेंगलुरु। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द रीसेंट टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनफोर्स्ड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पाकिस्तान। एकोइंग दिस स्टांस, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम कर्नाटका'स कोलर डिस्ट्रिक्ट हैव वॉलंटरिली स्टॉप्ड ऑल टोमेटो एक्सपोर्ट्स टू द नेबरिंग कंट्री। होम टू एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट टोमेटो मार्केट, कोलर्स APMC इज अ मेजर हब फॉर हाई quality tomato exports, supplying not only various Indian states, but also to the countries like Pakistan, Bangladesh, Afghanistan and Nepal. During the peak harvest season in June and July, the district typically exports 800 to 900 tons of tomatoes and other vegetables to Pakistan each week. Despite the anticipated economic loss, the farmers have chosen to prioritize national sentiment, unanimously deciding to suspend exports to Pakistan as a mark of solidarity and protest against the violence. Moving on towards Hyderabad, Telangana State Governor Jishnu Dev Verma flagged off vehicles carrying machinery for making eco-friendly leaf plates and cups to tribal villages funded from the governor's discretionary grants. The event was held at Raj Bhavan in Hyderabad to support the livelihood of particularly vulnerable tribal groups, PVTGs, last evening. In his interaction with the young members of PVTG community, the governor highlighted the cultural importance of tribal communities, calling them the original guardians of nature. He reiterated the commitment to improving their lives through focused development programs, and he further asserted that the Adivasis live beyond the boundaries of caste, creed or religion, and their way of life is deeply connected to nature and grounded in age-old traditions. Living with simplicity and minimal needs, they find contentment not in material wealth but in close relationships with the natural world. And we have some news from Chennai. The Ministry of Electronics and Information Technology launched two silicon photonics products designed and developed indigenously at COE CPPICS at Indian Institute of Technology, Madras. COE CPPICS at IIT Madras is a unique place in India which follows product research development and manufacturing model by leveraging CMOS fabric process compatible silicon photonics technology. The success of silicon photonics research in India has been possible because of a brilliant team effort by a determined group of young research scholars and engineers at CPPICS, dedicated team of ISMO Microsystems engineers for their IC packaging support, and scientists from SETS Chennai for use case system integration. IIT Madras collaborates with ISMO Microsystems, a Bangalore-based company that works in the development of packaged integrated circuits to overcome the existing limitations. CPPICS is actively developing indigenous PIC design rules and hardware infrastructure for precision packaging for system-level applications. So these were the updates from Chennai, Hyderabad and Bangalore. Let's ask Naveen about the rest of the three metro cities.
But Delhi. साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के अनुवाद पुरस्कार के लिए 24 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकें आमंत्रित की हैं। ये पुस्तकें 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के बीच पहली बार प्रकाशित होनी चाहिए। अकादमी ने अनुवादकों, प्रकाशकों और पाठकों से 31 मई तक पुस्तकों की एक प्रति भेजने का अनुरोध किया है। आवेदन प्रक्रिया और नियमों की जानकारी साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि राजधानी की 70 विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकरण के लिए ये मोबाइल वैन जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को अपने पंजीकरण के लिए इन मोबाइल वैन के पास अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा।
ये एक वैन है पूरी, इसमें दो कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से 70 साल के दिल्ली में जितने बुजुर्ग हैं उनका व्यय वंदना योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने की गाड़ी 70 दिन 70 गाड़ियाँ 70 विधानसभाओं में 70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों के लिए सरकार के 70 दिन पूरे होने के अवसर पर आज ये लॉन्च की जा रही है।
वहीं दिल्ली की कैबिनेट ने सभी निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस एक्ट के माध्यम से शहर के सभी 1677 स्कूलों की फीस पारदर्शी तरीके से नियंत्रित की जाएगी।
फीस लगातार पिछली सरकारों के समय में बढ़ती रही है, परंतु कभी भी सरकार के द्वारा उस फीस को रोका नहीं गया था। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया, एक्ट बनाया, और वो एक्ट जो अपने आप में फुल प्रूफ है, जिसमें हर एक के साथ न्याय है, सभी पार्टीज जो इसमें जुड़ी हैं सबके साथ बातचीत करते हुए उसको लीगली भी वेट किया गया।
रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने सैन्य स्कूलों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कल सतारा में एक सैन्य स्कूल के दौरे के बाद राज्य के 38 सैन्य स्कूलों की समीक्षा बैठक के दौरान ये अपील की। उधर केंद्र सरकार द्वारा मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद सांसद रविन्द्र वायकर द्वारा प्रस्तुत मराठी अध्ययन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी की निःशुल्क प्रतियां वितरित की जाएंगी। महाराष्ट्र के रोजगार गारंटी मंत्री भरत गोगावले ने कल श्री क्षेत्र आलंदी में संत ज्ञानेश्वर की 750वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण समारोह के उद्घाटन के दौरान ये घोषणा की। कोलकाता की बात करें तो पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में आज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग कह रहा है कि अलीपुर मौसम कार्यालय ने 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और आसपास के जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अब बात आज के मौसम की।
Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 33 degrees. Just like Bengaluru, Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with possibility of rain or thunder shower or dust storm. The temperature will hover somewhere between a minimum of 25 degrees and a maximum of 38 degrees.
दिल्ली मुंबई और अगर कोलकाता की बात करें तो राजधानी दिल्ली और कोलकाता में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के बीच रहने की संभावना है और कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मुंबई की बात करें तो तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, ऐसा मौसम विभाग कहता है। और चलिए और बात करते हैं अब देश दुनिया के इतिहास की, जिसका आपको इंतजार रहता है। कौन कौन सी घटनाएं आज के दिन घटित हुई, कौन कौन से व्यक्ति आज के दिन जुड़े हुए हैं।
लेट्स बिगिन विद 1854। Okay, apart from 1854, I have something from 1905. A ceremony on the 4th of May 1905 marked the official beginning of the U.S. acquisition of the Panama Canal. After the French had failed in completing the canal, this second effort succeeded in bridging the Atlantic and Pacific Oceans, dramatically altering world trade as well as the physical and geopolitical landscape of Central America. In 1924, more than two decades after Paris hosted its first Olympic Games in 1900, the French capital launched its sophomore Olympics, becoming the first city to host the Games twice. In 1959, the first Grammy Awards took place despite leading nominations. Frank Sinatra's only win is for the album cover of Only the Lonely. And First Lady of the Song, Ella Fitzgerald, became the first black woman to win a Grammy at the Recording Academy's inaugural awards show on 4th of May in 1959.
1878 में वो आज ही का दिन था जब थॉमस एडिसन का फोनोग्राफ पहली बार ग्रैंड ओपेरा हाउस में दिखाया गया था। 1989 आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष शटल STS-30 लॉन्च किया गया था। यह नासा का 29वां अंतरिक्ष शटल मिशन था और अंतरिक्ष शटल अटलांटिस का चौथा मिशन था।
In 1979, Margaret Thatcher, leader of the Conservative Party, became Britain's first female Prime Minister on 4th of May 1979. The Oxford-educated chemist and lawyer took office the day after the Conservatives won a 44-seat majority in general parliamentary elections. And apart from this, this is a very special day. If you are a binge watcher or you love to watch series, then today is the day for all of you. 4th of May, Star Wars Day, a global fan holiday that honors the iconic Star Wars franchise created by George Lucas. This date was chosen for the easy pun on the catchphrase, "May the Force be with you."
और तन्वी, आज का दिन न सिर्फ स्टार वॉर्स के लिए भी प्रसिद्ध है, आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, यानी फायर फाइटिंग डे भी आज के दिन मनाया जाता है। अग्निशमन कर्मी जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं और उन्हीं की याद में पूरा विश्व आज का दिन उन्हें याद करता है। और आज का दिन उन लोगों को याद करने के लिए भी मनाया जाता है जो कोयले की खदानों में अपना जीवन गुजार देते हैं, यानी कोयला खनिक दिवस, वो भी आज ही के दिन मनाया जाता है। कोल माइंस डे से कहते हैं, शुरुआत हुई थी आज ही के दिन सन 1980 में। और अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जो जुड़े हैं आज के दिन से।
If we are talking about today, 4th of May, let me just talk about the person whose name is very famous. And I don't think that anyone is there who hasn't heard the name of Audrey Hepburn. She was born on 4th of May 1929, a British actress recognized as a film and fashion icon. She was ranked by the American Film Institute as the third greatest female screen legend from the classical Hollywood cinema, and was inducted into the International Best Dressed Hall of Fame list. So we have a song by her from the film Breakfast at Tiffany's. Let's just hear that track.
Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Audrey.
आज कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार त्यागराज जी की भी जयंती है। संत त्यागराज जी का वास्तविक नाम कारकला त्याग ब्रह्मन था। दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कलाकारों और जनमानस में अपार श्रद्धा के प्रतीक थे पंडित त्यागराज।
The name of Tyagaraj's compositions, the Panch Ratnas, means five gems in Sanskrit, and all of the Panch Ratnas are set to the Adi Talam.
और कहते हैं कि संत त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री का जो योगदान था वो अविस्मरणीय था, और इन्हें कर्नाटक संगीत की तिकड़ी कहा जाता था। एक रचना सुनते हैं हम त्यागराज जी की जो लिखी हुई है।
This rendition that you just heard was sung by M.S. Subbalakshmi. And if we're talking about the great personalities, we cannot forget Tipu Sultan, whose death anniversary is today. He died a brave death in 1799. He was also referred as Sher-e-Mysore or Tiger of Mysore. He was the ruler of the Kingdom of Mysore based in South India. He was the pioneer of rocket artillery. And there are multiple great things that have been said about him. Dr. APJ Abdul Kalam, the former President of India, in his Tipu Sultan Shaheed Memorial Lecture in Bangalore, called Tipu Sultan the innovator of the world's first war rocket. So the music you just heard was from the series that was on Doordarshan made on Tipu Sultan, and this was the title track.
आज प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज जी की भी पुण्यतिथि है। बनारस घराने के तबला वादक, काशी के कबीरा चौरे मोहल्ले में उनका जन्म हुआ था और कई पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया था। सुनते हैं तबले की थाप उन्हीं के द्वारा। पंडित किशन महाराज के तबले की थाप के बाद अब आपको एक बार फिर हम लिए चलते हैं हंसती खेलती दुनिया में। कार्यक्रम के शुरू में मैंने और तन्वी ने कहा था कि आज का दिन है वर्ल्ड लाफ्टर डे, तो क्यों ना इस खूबसूरत गीत के साथ तन्वी छोड़ा जाए।
यस प्लीज लेट्स जस्ट हियर दिस। Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhata Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.